कि बच्चे किसको देखो, आत्मा को देखो, और आत्मा को देखो तो ये ज्ञान हम बच्चों को कब मिला? संगम पे मिला। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब कहाँ हो, संगम युग पर हो। संगम युग वो युग है जो हमारा जीवन ही बदल देता है। हम ब्राह्मण बन जाते हैं और ब्राह्मण बने तो अगला कदम देवता बन जाते हैं, और देवता बनते हैं तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। ये तीन शब्दों का ही सारा ज्ञान है। इसलिए जब भी चलो सोचो कि हम कहां पर हैं, संगम पर हैं। ये दिन फिर लौट के कभी नहीं आने वाले। पूरे 5000 साल के बाद ये शुभ दिन हम बच्चों के लिए आए हैं, क्योंकि संगम युग कल्याणकारी युग है, भाग्य बनाने का युग है, एक का पदम पाने का युग है। इतना सस्ता सौदा किसी जन्म, किसी युग और किसी समय में होने वाला नहीं है। इसलिए अभी अलर्ट हो जाओ, यही दिन है संगम के, ले लो जो लेना है। फिर कोई भी कभी भी आपको नहीं कहेगा कि अमृत वेले उठो मुझे याद करो, मुरली मिस नहीं करो, पढ़ाई पढ़ो। कभी कोई कुछ नहीं कहने वाला कि अपना तन मन धन सफल करो। पूरा 5000 साल में ये हम बच्चों के लिए संगम के दिन बड़े सुहाने आए हैं। ये सुहाने दिन ये भी जा रहे हैं। 85 साल तो हो गए, बाकी कितने दिन और बचे। ये भाग्य आप सबका कि कोरोना टाइम में देखो क्या हालात हो गए हैं। आपको बाबा ने यहां बुलाया, भट्टी किया, इतना जन्म जन्म का भाग्य बना लिया। आप कितनी महान आत्माएं हो, इस संगम पे अपना भविष्य जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर का बनाने का यही वेला है। फिर कोई भी नहीं कहने वाला या सुबह कितनी बजेगा अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, किसी युग में होगा। तो ये दिन है, खूब इंजॉय करो, लूट लो जो लूटना है, फिर बैठ के हम सब खाएंगे। जब देवता बनेंगे तो क्या करेंगे, वहां योग करने जाएंगे। अमृत वेले 0 था सुबह टेम्परेचर, आप सब भाग भाग के आ रहे थे फिर जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि देखो सतयुग में तो हम ऐसे नहीं उठेंगे कि चलो योग करो, वहां देवता बन जाएंगे। लेकिन देवता बनने के लिए अभी योग करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये भस्मीभूत दुनिया है। आज बाबा ने बोला ना मुरली में, ये कौन सी दुनिया है, ये मृत्यु लोक है, ये भस्मीभूत दुनिया है, इससे हम बच्चों को संन्यास करना है, बोला ना बाबा ने आज। तो इस भस्मीभूत, कहते ना सब कुछ भस्मीभूत हो गया, इसका मतलब सब कुछ लुट गया, खत्म हो गया। तो ये खत्म होने वाली दुनिया है, इससे संन्यास करो। या अब तक भी बुद्धि में अटैचमेंट रखेंगे तो भविष्य में क्या मिलेगा। अभी फोन आ जाए जी इसमें तो बम लगा है इस हाल में, तो फटाफट भागेंगे ना, भागेंगे नहीं है, बुद्धि यहां लटकेगी है। तो जो बाबा जो ऑल माइटी इस सृष्टि का मालिक सर्वशक्तिवान, तकदीर की लकीर खींचने की कलम खुद भाग्य विधाता ने हम बच्चों के हाथ में दे दी है कि बच्चे जितना भाग्य की तकदीर की लकीर खींचना चाहो खींच लो, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और फिर भी बाबा ने बोला बच्चे ये सारी दुनिया कहां है, बमों के ढेर पर है कि नहीं, विनाश होना है ना, भस्मीभूत होना है सब कुछ, तो कैसे होगा। बाबा ने तो कितना कहा ग्रह युद्ध हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, ये सब लड़ेंगे। आज भी क्या बोला, रसिया और अमेरिका लड़ेगा और मक्खन किसको मिलेगा, हमें मिलने वाला है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए भस्मीभूत दुनिया से बुद्धि को हटाना पड़ेगा। ऐसे नहीं इधर के भी मजे ले लो और इधर के भी ले लो, इन मजों में तो क्या है, दुखी दुख है। बाबा ने कितनी बार कहा पहले अव्यक्त मुरलियों में, अल्पकाल का मजा सदा काल की सजा। तो ये तो सजा है, इस भस्मीभूत दुनिया में बुद्धि लगाना ये अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि सन्यासी ऐसे नहीं बनेंगे। थोड़ा चिंतन करें, पहले दादियां कितना सुनाती है कि मुरली होती थी, फिर आधा घंटा बाबा हम बच्चों को घुमाने ले जाते थे, मुरली का चिंतन करते थे। अभी मुरली, अभी देखो हम पढ़ाई किया, अभी चिंतन कर रहे हैं। तो बुद्धि में जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कुछ पॉइंट बुद्धि में ऐसे नोट कर लो कि देखो हमें सन्यासी आज सारा दिन ये अभ्यास करो कि ये तो भस्मीभूत दुनिया है, कब्रिस्तान है, कांटों का जंगल है, ये गोबर की दुनिया, जो बाबा ने कितना बता रखा है, इस दुनिया से बुद्धि को हटाना है और अब घर जाना है। तो जहां जाना है उसको याद करें, और फिर हमने आना कहां है, आज बाबा ने क्या कहा, सतयुग के मालिक बनेंगे, उसमें भी विश्व के मालिक, सतयुग में भी विश्व के मालिक बनेंगे। तो थोड़ा मालिकपन की स्थिति में, थोड़ा स्मृति में आओ कि वहां क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। आप सबके पास पता है, एक एक तो विमान होगा, होगा कि नहीं भाई। सतयुग में जब मालिक बनेंगे तो वहां क्या होगा, कोई स्कूटर होगा क्या, या गाड़ी, या BMW, वहां क्या होगा, एक एक सबके पास पुष्पक विमान होगा और एक एक पे होगा। और सब कहां क्या करेंगे, वहां कोई योग करने जाएंगे, मुरली सुनने जाएंगे। बाबा ने कितना बोला हुआ, बच्चे तुम्हारा दूध भी हेलीकॉप्टर में आएगा, बोला नहीं बाबा, कई मुरली बाबा ने कितना नशा चढ़ाता है। तो भाई तुम सतयुग के मालिक बनने वाले हो तो थोड़ा उस सतयुग में भी बुद्धि को दौड़ाओ, तभी तो नशा चढ़ेगा। चिंतन का मतलब क्या है, वहां आप सब सुबह सुबह घूमने जाएंगे, बाग बगीचों में जाएंगे, सुबह रस पियेंगे, आप सबकी जुतियों में हीरे लगे होंगे, यहां तो हीरा पैर नहीं मुश्किल है, नहीं होगा कि नहीं है। तुम्हारे जो कपड़े होंगे, एक बार ड्रेस डालेंगे तो कैसी होंगी है, दूसरी बार तो दासी भले डालेंगे, आप डालोगे क्या है। और बाबा कहते पीछे पकड़ के चलेंगे, नहीं सतयुग में थोड़ा चक्कर तो लगाओ। देखो अभी थोड़ी बातें आती है तो खुशी होती है, और जब खुशी होती है ना तो वो संस्कार बन जाता है, वो स्मृति रहती है, फिर बदली होता है संस्कार। थोड़ा इमर्ज करो, अरे क्या बाबा ने कितना बोला, सतयुग में आप बच्चों के पास एक एक दिल्ली जितना एक एक के पास महल होगा, होगा कि नहीं होगा। आज यहां दिल्ली में एक फ्लैट ले तो कहते करोड़ों लगते, वहां पूरा आप ही मालिक होंगे, समझो। अरे हम कितना कुछ हमारे पास आने वाला है, थोड़े दिन की बात है, और करना क्या है, करना क्या है, इस दुनिया को ही तो भूलना है। फिर बाबा ने गीत में कितना अच्छा कहा, क्या बोला है कि आने वाली तुम तकदीर हो भाई, और तस्वीर भी हो, अपनी तस्वीर अपनी खुद अपने हाथों से खींच लो। बाबा तो खुद आलमाइटी, इस सृष्टि का मालिक, भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की तकदीर की लकीर हम बच्चों के हाथ में दे दी है, बच्चे खींच लो, खींच लो जितना खींचना चाहो, अभी तो टाइम है, या फिर और कोई टाइम आएगा। और बाबा ने हम बच्चों को कितना निश्चिंत किया हुआ है कि बच्चे देखो सारी जिम्मेवारियां मैं तुम्हारी लेता हूं, है कोई दुख तकलीफ कोई भी समस्या। कितना बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा, बच्चे एक बार दिल से कहना मेरा बाबा तो बाबा हाजिर हो जाएगा, फिर तुम तकदीर की लकीर कितनी खींचनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए ना सबसे ज्यादा। देखो अभी हम तकदीर की लकीर लंबी नहीं खींचेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि साक्षात्कार तो होना है ना कि क्या पद पोजीशन हमने मेहनत किया और भविष्य में मिलने वाला है। फिर खुद ही बाबा कहते बच्चे फिर शंका आएंगी, शर्म आएगा ना अपने पे, तो ऐसा ना दिन देखना पड़े। इसके लिए अपनी खूब तकदीर बना लो, और ये थोड़े से बाकी दिन बचे या ज्यादा दिन है। बाबा ने आज कितना मुरली में बार 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 कहा बच्चे सारा आधार ही प्यूरिटी है, क्योंकि पतित पावन बाप आया है हम बच्चों को पावन बनाने, पवित्र बनना है। अगर पवित्र ही नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया में चल सकेंगे? फिर तो ये सपने ही देखो जी कि हम सतयुग में महलों में रहेंगे, कोई घुसने देगा हैं? इसलिए पवित्र बनना है, हैं? आज बाबा ने कितना मुरली में कहा कि लोग पवित्र बनने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, दवाइयां लेते हैं, ये करते हैं। हम तो खुद पवित्र बनते हैं, हम गवर्नमेंट को भी कितनी मदद करते हैं, दूसरों में कहते हैं भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, बनेंगे तो बच्चे पैदा करेंगे हैं? तो हम कितनी सरकार की भी मदद करते हैं, और पवित्र रहेंगे तो निरोगी रहेंगे। आज हॉस्पिटलों में लाइन क्यों लगती है? शुद्ध रहते नहीं, ना मन पवित्र है ना तन पवित्र है, तो क्या होगा? मन रोगी रहेगा ना, फिर हॉस्पिटलों के चक्कर काटते बेचारे। हमारी 150 साल उम्र ऐसे थोड़े सतयुग में होंगी। बाबा कहते अब जितना तुम याद में रहोगे तो उम्र कितना बढ़ेंगी ना। हमारे आदरणीय दादी जानकी जी की उम्र कितनी थी हैं? 104 साल थी हैं? और माता थी, सारी जगत की माता बन के हम सबको प्रेरणा देके गई है। तो ये कैसे हुआ? ये योग से हुआ ना कमाल। तो आप योग करें, हमारे सामने तो बहुत एग्जाम्पल है बड़ों के कि हम जितना योग में रहेंगे, पवित्र रहेंगे, मुरलियों का चिंतन करेंगे, आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और सदा उड़ते रहेंगे। नहीं तो ऐसे नहीं, बाबा ने आज कितना कहा कि भाई ये जुदाई जब होती है, हमारी तो जुदाई कितनी रही बाबा से हैं? 5000 साल। गीता आता ना, बड़ी लंबी जुदाई, ये गीता आता है ना, तो ये बहुत लंबी जुदाई के बाद हमें भाग्य से भगवान मिले हैं। लेकिन उनको जो पसंद है वो हमें भी तो पसंद होना चाहिए, यही बोला ना मुरली में, यही था ना। अब उनको क्या पसंद है भाई? वो सारे संबंध बाबा कहते बच्चे बाप से रखो, वो हमारा पति भी है, बाप भी है, टीचर भी है, फ्रेंड भी है, सब कुछ है ना। तो जो उसको पसंद है वो हमें होना चाहिए। उसको क्या पसंद है? उसको एक ही पसंद, आज मुरली में क्या था, किसी बाबा को ही याद करो और किसी को याद नहीं करो। और शिव बाबा हमारा पतियों का पति, हमारा पति मान लो। अब पति को कोई पसंद चीज ना हो, दुनिया में भी देखो कि मान लिया दूसरी कोई उसकी फ्रेंड हो या पत्नी हो, और दूसरे से फोन करे बात करे तो उसको अच्छा लगेगा? लगेगा, क्या करेगा वो? थप्पड़ मारेगा, तलाक दे देगा, या उसको मोबाइल चेक करेगा कहाँ फोन करती है, होता है ना दुनिया के हिसाब। दुनिया में भी ये चीज अच्छी नहीं मानते हैं है? और तलाक तक की नौबत आ जाती है जो दूसरे से प्यार करेगी तो, होता है ना। और यहां हम उस प्रीतम जो सब कुछ जानता है उससे वायदा क्या किया था? इतनी जुदाई के बाद हम मिले तो क्या वायदा किया? तुम्ही संग खाएंगे, तुम्ही संग पिएंगे, जैसे चलाएंगे, जैसे बिठाएंगे, जो कहेंगे वैसा करेंगे। कहा कि नहीं कहा? कहा ना। फिर आप बात करो दूसरे से प्रीत रखो, दूसरे से प्रीत रखो तो उसको कैसा लगेगा? वो साथ रखेगा? वो तलाक ही देगा ना, कहेगा तुम्हारी मर्जी है भाई, तुमने धोखा दिया, होता है ना। इसलिए ध्यान रखना है कि लंबी जुदाई के बाद ऐसा साजन, ऐसा साथी, ऐसा सहारा मिला है। दूसरे सहारे सब छूटने और टूटने वाले हैं, सब दुख देने वाले हैं, कहीं सार नहीं है। ये प्यारा साथी इससे कभी जुदा ना हो, ये फिर कभी मिलने वाला नहीं है। ये थोड़े से दिन है, उसके प्यार में खोए रहो। वैसे तू ही मेरा साथी सहारा है, और सहारे तो देख लिए 63 जन्म देखे ना, क्या किया, लुट गए। आज मुरली में क्या था कि भक्ति में क्या किया, कितना ब्लाइंड फेथ हुआ ना, है सब कुछ लुटा दिया। बाबा ने कहा ना, मैं तुम्हें क्या से क्या बना के भेजा था, और तुमने अंधश्रद्धा में क्या क्या नहीं किया, टिप्पण घसा दिए, है खाली हो गए, है क्या क्या नहीं किया तुमने। अब ये थोड़े दिन अब करना ही क्या है, बाबा कोई तकलीफ दे रहे क्या, है बस चलो उसी से ही बात करो। बाबा ने जो मुरली में कहा, बाबा ने आज क्या क्या नहीं कहा, मुझे अपने जीवन में लाना है। वो लाने में फायदा किसका है, पड़ोसी का है क्या, फायदा अपना ही है, खुशी अपनी है, उमंग उत्साह और प्राप्ति किसकी है, हमारी है। जो करेगा सो पाएगा, ये विधान है विधाता का। इसलिए ये दिन लौट के नहीं आने वाले, फिर नहीं कहना हमें तो बताया नहीं। अरे भाई पालो जो पाना है, वो भर भर के दे रहा है, ले लो बेटा ले लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा, ले जाओ जितना लेना। और हमारे लिए ही आया है, वो हमारे लिए ही आया है, और उसके प्यार में अब दूर ना हो जाओ। उसको क्या पसंद है, उसको यही पसंद है कि मेरी याद में रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है कि नहीं। तो फिर दूसरे की याद में क्या है, ऐ कल्याण है, तो ऐ कल्याण का काम करना है क्या। ऐ कल्याण करते करते तो दिवाला निकल गया ना, हैं? अभी हंसी आती है, लेकिन अभी ध्यान रखो, अब नहीं तो फिर कभी कोई मौका मिलने वाला भी नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यवान हो, अपने भाग्य के गुण गाओ। आज बाबा ने सारी मुरली में कितना उमंग बढ़ाया है, कितना उत्साह बढ़ा दिया कि आप तो विश्व के मालिक मेरे बच्चे हैं। और मालिक बनने के लिए वो क्वालिटी भी बता दी, क्या क्वालिटी बताई, क्या बताया बोलो, हैं? अपने पहले मालिक तो बन जावे, देखें हमारा मन बुद्धि संस्कार विचार जो बाप की पसंद है उस संसार चल रहे हैं या कहीं दूर जा रहे हैं, यही चेक करना और चेंज करना है। आज बाबा ने क्या किया, इजी तो रहो लेकिन अटेंशन भी रखना है, ऐसा नहीं कि कोई परेशान हो जाओ। आज बाबा ने कितना कहा, ये सहज पढ़ाई है, बोला ना, इतनी सहज पढ़ाई कहीं होंगी ना, कापी ना पेन, बस अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। आज यही बोला ना बाबा ने, कोई मेहनत है क्या। और बाबा ने आज कितना अंडरलाइन कराया, बच्चे कभी मुरली मिस नहीं करना, ये मुरली ब्राह्मणों का श्वास है, ये जान है, हमारा जीवन है, ये दवाई है हमारी, संजीवनी बूटी है, ये अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए, बाबा तो इतना भी कह देते हैं ना कि मुरली कभी मिस ना करो, तबीयत भी खराब हो ना, खटिया भी लेके रजाई भी लेके क्लास में आ जाओ, बोलते ना बाबा। बाबा ने एक दिन भी मुरली कभी नहीं मिस की ना। बाबा ने 4-5 दिन पहले भी था कि बाबा का रथ को तकलीफ हुआ तो भी बाबा उनके तन में आके भी लिखते थे, बोला ना बाबा ने कि मेरे बच्चों को मुरली, हमारे लिए कितना रिगार्ड, कितना रेस्पेक्ट स्वयं भगवान को है कि मेरे बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रहे। और बाबा पढ़ावे और हम रजाई में ही रहे, या दीदी फोन करे कि आज मुरली में नहीं आए, आज गुरुवार था, भोगी डब्बी में दूसरे के हाथ उसके घर भेजे, बहन जी वह ठंडी हो गई थी आए नहीं, है? नहीं ऐसा नहीं भाई। आज लाइन अंडरलाइन करो कि हमें मुरली मिस नहीं करनी, अगर मुरली नहीं तो उमंग सा होगा। ये पंख है हमारे, अगर किसी में उमंग सा के पंख ही ना हो तो उड़ेगा। दादी कहती थी जिसमें उमंग सा नहीं, जैसे बोली एक पक्षी हो और पक्षी उड़े नहीं तो शिकारी आएगा, शिकार करके ले जाएगा। तो हमारे जो मुरली है ना, ये मुरली तो हमारे श्वास है, अगर श्वास ही नहीं है तो उमंग सा रहेगा। इसलिए मुरली आप सब युद्ध के मैदान में भी हो, सबसे पहले माया काटती है सप्लाई लाइन, और वो सप्लाई लाइन क्या कौन सी है, वो मुरली है। इसलिए ध्यान देना है, कुछ भी हो जाए, सो काम छोड़ के भी हमें पहला काम हमारा मुरली का है। फिर आप देखो कैसे उड़ते रहोगे, उमंग उत्साह में रहोगे और क्या से क्या नहीं बन जाओगे। क्योंकि पढ़ाई है तो सोर्स ऑफ इनकम है ना, पढ़ाई नहीं करेंगे तो कमाई होंगी, और जिसकी कमाई ना हो उसको क्या आएंगी, उबासी आएंगी, उदासी आएंगी, यही होगा ना। तो जिसकी कमाई होती है तो कैसे नाचता जाएगा, होता है ना, क्योंकि भरपूर हो जाती आत्मा। कुछ भी हो जाए हमें बाबा की मुरली, देखो कितना शास्त्रों में गायन है कि जब मुरली बजती थी तो गोप गोपियां दौड़ दौड़ के आती थी, है ना शास्त्रों में गायन। तो आप ऐसे दौड़ते आओ कि क्या कमाल है बाबा, नहीं तो 7 बजे तो दरवाजे बंद हो जाते। कि नियम का आवे, टाइम का आवे, और ये मुरली हमारा जीवन है। जिसकी मुरली सप्लाई लाइन ये सब ठीक है ना, आप किसी ब्राह्मण पे नजर मारो, जिसकी मुरली ठीक है ना उसका भविष्य ठीक ही है, उसकी कोई समस्या ही नहीं है। नहीं तो यही कहेंगे पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दीदी क्या करें ये समस्या आ गई, ये हो गया, भाई आनी है ना समस्या, समस्या का समाधान ही मुरली है, है? अगर भोजन ही कोई नहीं खाएगा तो खून बनेगा, ताकत आएंगी, है? बड़ों दादियों की कितनी ऊंची वो दिनचर्या रही है कि जब तक मुरली ना दूसरे को सुना लें तो दादियां कई तो कहती हम नाश्ता भी नहीं करती थी। दादियां 10-10 बार 12-12 बार हमें बड़े बताते हैं भाई बहन कि दादियों की इतनी दिनचर्या ऊंची रही है, कम से कम एक बार तो आ जाएं दिल से पढ़ने, एक बार। तो ठीक है जी, मेरा टाइम अभी हो गया, मैं अपना मुरली का रिवीजन हुआ है, लेकिन ये ठीक है आप कुछ यहां अंडरलाइन करके जाओ, भर के जाओ कि हमें बाबा की हर आस को पूरा करना है। और भरपूर तो आप हुए हैं 3 दिनों से, आज आप सबका है वहां दादी जान की पार्क में बता रहे थे, नाच गाना पिकनिक प्रोग्राम है, तो बड़ी खुशी है, है? आप बाबा के स्पेशल बच्चे हो, बाबा आप सबकी खातरी स्पेशल कर रहा है। कितनी हमारी आदरणीय सुमन बहन ने अच्छा अरेंज किया, आप सबकी क्लासें करा, सबकी पालना करके भरपूर करके भेज रहे हैं। एक बार उनके लिए थोड़ा है ठीक है। ओम शांति जी।